بھی روتی ہیں تو وہ جھوٹ موٹ کے لیے روتی ہیں. کیونکہ میری بہن کی جب شادی ہو, جب گھر جانے لگی اور رونے لگی, تو ٹھیک مہاراج جنک جیسے, مہاراج جنک ایک دم تتو گیانی ہے, سنسار سے ایک دم نبرت ہے, پورن بھیراگیہ وان ہے. اور سیتا جی پتا جی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سے جب رونے لگی پتا جی وہ بھی رونے لگے. تو ہم لوگوں کی سادھارن لوگوں کی تو بات کیا بد ہے جی. تو جا کر کے جب پکڑ کر کے رونے لگی تو اس سمے میں بس رہا نہیں جائے. تو وہ سمجھ سکتا ہے یا سمجھ سکتی جس کے اندر میں بھاتری اور بہن کا پریم ہے وہ سمجھ سکتی. آج کل یہی پریم تو سنسار سے چلا جا رہا ہے. بھیا کو پکڑ کر کے اور رونے لگی, اور سیدام کی رکھیے تو زور زور سے بول کر کے رو رہی ہیں, اور سیدام بھیا کیا کر رہے ہیں, اور سانتنا دینے کے شبد ان کو نہیں ہیں. سانتنا دینے کے بھی شبد بہت ولمب ہو گیا ہے نا, اس لیے چپ بھی نہیں کرا رہے ہیں. اور وہ ڈکر کر کے رو رہی ہے اور ان کے آنکھوں سے بھی آنسو بر رہے ہیں. اور اس سمے میں ساون کا رنجھن برسا بھی بھرا ہے, ان کا دکھ دیکھ کر کے مانو وہ بھی پگھل کر کے وہ رو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں روتے روتے پھر شانت ہو گئی. بھیا سے انہوں نے بلانا دیا کہ تم بہن کو بھول گئے, تم آئے نہیں. کہ نہیں بہن ایسی بات نہیں, کسی کام میں تھا اس لیے کام میں لگنے کی وجہ سے ولمب ہو گیا. آنا تو تھا ہی ولمب ہو گیا. میا اور پتا جی بھی تمہارے لیے ولمب کے لیے بڑے دکھی ہیں, ابھی تم کو بلا رہے ہیں, ابھی چلو تیار ہو جاؤ. بڑی خوش ہو گئی, چلو کنتو جائیں گی کیسے, ساتھ سے آدیش تو لینا پڑے گا. آج کی لڑکیاں تو ہیں نہیں جو ساتھ سے نہیں پوچھا چل دیا جہاں. کبھی رات میں 9 بجے نکل گئی, 12 بجے نکل گئی, کبھی ادھر میں نکل گئی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. گھر میں بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے ایک انوشاسن تھا مٹھ مندروں میں برہمچاریوں کا, کہیں جائیں گے تو پوچھ پاچھ کر کے. آج کل وہاں پر بھی انوشاسن نہیں, کوئی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون بیٹھا رہے گا پوچھنے کے لیے. پہلے ایسا نہیں, جا کر کے بولے یہ پتا جی نے کہا ہے, یہ بہن کو لے آؤ, آپ آدیش دیں تو بہن کو لے جاؤں. کہ جی ہمارے گھر میں کون رہتا ہے, ہمارے گھر میں تو اور کوئی ہے نہیں, ہمارے گھر میں بھی تو جھولے پڑیں گے, کتنے کام کرنے, رسوئی بنانا ہے اور کتنا کام. وہ جانے کے لیے منع کر دیا. منع کر دیا تو رادھیکا جی کی دشا جو اب کچھ تھوڑی سی پرفلت ہو گئی تھی, اب ان کی دشا کیا ہوگی, ان کا مکھ میلا ہو گیا, ہردے بھی بھر گیا. تو جی یہ جانے نہیں دیں گے, بڑی دکھی ہو گئی. سدام بھیا جانتے تھے اور ان کے پتا جی جانتے ہیں جیسے یہ کیسے آدیش لیا جائے گا. تو انہوں نے پٹاری کھولی اور پٹاری سے اچھے اچھے کپڑے النکار اور یہ سب یہ میا نے آپ کے لیے بھیجا ہے, سمجھی ہے نا, تو سمیدھائن کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے. اس کو دیتے ہی وہ تو یہ اچھا کل ہی اس کو لوٹا لینا یہاں. اچھا پھر کل تو نہیں, 2-4 دن رہے گی. نہیں نہیں ایسا مت کرنا, جلدی سے اس کو بھیج دینا. ہمارے گھر میں لیوانے کے لیے کوئی نہیں ہے, تم ہی لوگ آ کر کے دے جانا. اچھا یہ جٹلا ہے نا, یہ ودھوا ہے کہ سدھوا ہے, کیا ہے؟ کیا ہے اس کا پتی بھی ہے, اس کا نام کچھ ہے ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے اس کا نام بھی. وہ کہا تھا وہ گڑبڑ. کل ہم نے دیکھا رادھا گنو دیش دیوی کا, اس میں دیکھا تو اس میں لکھا کہ اس کے پتی تھے, تو وہ پتی کا نام ہے اور پتی جیوت تھے کہ نہیں یہ اس میں نہیں, پتی کا نام ہے اس کا. تو انہیں ہم ہی بھر دی اور ان کو چھکڑا ہوتا ہے نا بہت سندر اچھے اچھے بیل لگے ہوئے ہیں نو ابھی نوین بیل اور اچھی گاڑی سجی ہوئی ہے رتنوں سے سجی ہوئی ہے, جوا بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں اور ریشم سے اڑائے گئے اور اس میں چھتری بنی ہوئی ہے گاڑی کے اوپر اور اس میں بیٹھا کر کے جب سیما میں پرویش کیا تو نہ جانے کیوں رونے لگی, کیوں رونے لگی, یہ دکھ سے رو رہی ہیں نا آنند سے رو رہی ہیں, آنند سے بھی اور دکھی. ہاں تم لوگ جانتی ہوگی جہاں یہاں سیما پر پہنچی بس بابا بابا کہہ کر رونے لگی اور میا میا ڈکر ڈکر کر رونے لگی. اور اتنے میں گاؤں گھر کی آس پاس کی جتنی بھی مہیلائیں ہیں اور لوگ ہیں سب نکل کر کے آئے, سواگت کیا اس لالی سے, ملے لالی اور رونے لگی, وہ بھی رونے لگ گئے. گھر میں لے گئے سب لوگ ملے جلے. اس کے بعد میں لالی اب آنندت ہوئی, میا میرا جھولا لگ گیا, میرا جھولا کہاں ہے؟ تو میا نے پہلے سے یہ جھولا تیار کر کے رکھا. گھر کے پیچھے باغیچہ ہے اور باغیچے میں سمال کے پیڑ ہیں, کدمب کے پیڑ ہیں, آم کے پیڑ ہیں, کوئل کہک رہی اس میں, مور بھی ناچ رہے ہیں, ہرن اتیادی وہاں پر اتنت سندر تھی. یہ کہاں ہے؟ گہور بن, گھر کے پیچھے ہی گہور بن, اور اسی میں جھولا سب سے انہیں ڈال. میا نے ان کے لیے نئے اچھے اچھے کپڑے جو ان کے لیے جو بنائے تھے اچھے سے اچھے, انہوں نے سب اس کو پہنایا اور سخیوں کے ساتھ میں گہوار بن میں جا کر کے یہ جھولا کے لیے پرستت ہوئی. سب سخیاں بھی للیتا وساکھا سب جیت گئی. جھولا بھی سندر لگا ہے کنتو جھولانے والا کوئی نہیں. اتنے میں کوئی سخی پیچھے سے شاما سخی کو لے کر آئی. پروش روپ میں تو آ نہیں سکتے اسپشٹ روپ سے, اس لیے سخی سج کر کے سبل نے سخی سجا دیا. دوسرے راستے سے پچھواڑے سے گہور بن کے ادھر ادھر ہم لوگ پریکرما جاتے ہیں ادھر سے گہور بن جاتے ہیں. پہلے تو نہیں سمجھ سکی لوگ تو پیچھے سے ہاؤ بھاؤ اور اسپرش سے ان لوگوں نے سمجھا یہ شیام ہی. پھر تو جھولا بڑی تیزی کے ساتھ میں جھولنے لگا, سخیاں جھولانے لگے, کبھی کرشن جھولا رہے ہیں. اس پرکار سے یہ تھا ان کا آج کا دن. وہ لیلا کب ہوتی ہے؟ جب رادھا جی بچڑے کو لے کر کے اکشتی بسنت پنچمی, تو ایسے ایسے دونوں کا ملن اور جھولن ہوتا ہے. اور جگہ لوگ جھولتے ہیں کنتو برج کا بھاؤ لے کر کے نہیں, جہاں وہاں پر جھولتے ہیں वहाँ पर राधा और कृष्ण संबंधी गान होते हैं यहाँ, और ठीक वही भाव लेकर के यहाँ पर ब्रज में ही नंदमल जी आए हैं। झूला में भी ट्रीट होता है, झूले पास बैठे हैं, झुलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि झूला अपने आप झूले बैलेंस से, जैसे वो कसरत करते हैं ना, वो क्या दम की, ऐसे ही झूला पर कृष्ण बैठे हैं। दो पीढ़ियां हैं, कोई किसी में एक पीढ़ी होती है, सोने का लगा हुआ झूलने के लिए एक पट्टी होती है, आपका भी दो पट्टी होती है जुड़ी हुई आमने सामने, तो एक पर श्याम बैठे हैं, एक पर श्यामा जी बैठे हैं, और कभी कभी एक ही पट्टी होती है तो उसी पर दोनों बैठे हैं, कृष्ण उस पर खड़े हैं, और बैलेंस ऐसे किया जो धीरे 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 एकदम ऊपर जाने लगा नीचे, जिस समय इधर चलता है तो राधा जी ऊपर कृष्ण नीचे हो जाते हैं ऊपर में जाने पर, जब इधर से झूल करके जाता है तो इधर में कृष्ण ऊपर हो जाते हैं राधा जी नीचे हो जाते हैं। राधा जी तो शक्ति हैं, लादनी शक्ति हैं, अचिंत शक्तिमान है, ये बात तो ठीक है, कृष्ण झूला भी रहे हैं राधा जी की शक्ति से, किंतु फिर भी उनकी क्या बात, ब्रज के लता गुल्म तृण भी सचिदानंदमय और शक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, सबको कुछ बर देने में भी समर्थ है, किंतु अपने स्वभाव को वो और शक्ति को वो विकास नहीं कर रहे, तृण तो तृण जैसा ही पड़ा है, फूल है तो फूल ही जैसा लग, गाय है तो गाय ही जैसा, कोई सर्वशक्तिमत्ता या सचिदानंद रूप या सब कुछ देने की सामर्थ्य को वो सब प्रकाश नहीं करते, तो राधा जी कैसे प्रकाश कर देंगे, इसलिए वह सहमी थी, डरी हुई थी, कृष्ण को ही पकड़ लेती है, कृष्ण इच्छा करने पर भी जो उनको स्पर्श नहीं करती, आज मानो डर करके उस झूले में उनको ऐसे जोर से आंकू पांकू कष्ट लिए, क्या उन्होंने गाया ना, अंगू पंगू, अंगू पंगू माने क्या, अंग से उसी अंग को, पैर से पैर को, हाथ से हाथ से, सबको उन्होंने ऐसे पकड़ लिए मानो एक हो गए, ये झूला नहीं संभव है, दूसरी झूला में ये संभव सब संभव नहीं है, इसलिए ये ब्रज में या कृष्ण के समय में झूला का ये महत्व है, जो कृष्ण हजार चेष्टा के द्वारा में जिन चीजों को जिन भावों को नहीं पा सकते, इसमें उस भावों को आसानी से सहज रूप में, यहां तक कि गिड़गिड़ाने लगती हैं या बंद करो तो और भी जोर से चलाते हैं, कभी सखियां ललिता विशाखा जी दोनों तरफ में होकर के और उसको कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी कृष्ण राधा जी उतर जाती हैं उनके बदले में, उनके साथ में ललिता जी को विशाखा जी को सबको वो बैठा करके, इस प्रकार से ये बरसाने में राधा कुंड में नंदगांव में ब्रज के सब सर्वत्र ही वृंदावन में भी सिंडोले का ये सब उल्लेख है, एक अविच्छेद अंग है कृष्ण की लीला का, विशेष करके रासलीला में भी इसका सुना जाता है, उसमें भी कोई भी ऐसी लीला नहीं इसका, इसलिए ब्रज में इतना इस लीला का प्रचलन। एक और बोलो तो सुनो जो अभी गाया था,
तुलन पधारो झुके आए बदरा, राधे झूला न पधारो परम सयानी वृत भान की लगी तुम तो परम तुम तो परम सयानी वृष भान की लली तुम तो परम सयानी राधे झूला न पधार झुक आए बजरा राधे झूला न पंचे रंगे सारी और श्याम चदरा
पंचे रंगे
पद का भाव आप लोग समझते हैं कि नहीं? वर्षा सावन की अभी होने वाली अभी हुई नहीं, काले काले मेघ आकाश मंडल में छा रहे हैं, मानो अभी वर्षा होने वाली, अभी वर्षा होने वाली। श्रीमती जी श्यामा जी गहवर वन में झूला वहां पर लगा हुआ है और ये कुछ फूलों को लेकर, पुष्पों को लेकर माला गूंथ रही है, माला गूंथ रही। श्याम उधर से आए खड़े हैं, आध घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, वो ऊपर देखती ही नहीं। ललिता विशाखा जी सभी खड़ी हैं, आज इनको क्या हो गया, माला गुथना भी नहीं चल रहा, उल्टा सुल्टा माना फूल सफेद तो सफेद ही काट रहे हैं, किंतु उनके तरफ में देख नहीं रही। काले काले मेघ अब जोर से भयंकर वर्षा होने वाली और श्याम खड़े हैं और सब सखियां प्रतीक्षा में, ये अब ये उठें और झूले पर चलें। श्याम कह रहे हैं किंतु उनकी सुन नहीं रही। ललिता जी कह रहे हैं तुम्हें आज क्या हो गया, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे लिए खड़ा है बाट जोरा, अभी झूलन पधारो। यदि खूब जोरों से वर्षा हुई मूसलाधार तो फिर क्या होगा, झूला झूलेगा? ये तो रिमझिम में ही थोड़े थोड़े दो एक बूंदियां पड़ रही हैं, उसी में संभव है। इसलिए जल्दी उठिए, मान न करें। आपका मान कैसा है? इतना भयंकर आप हैं तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी है ना। आपका शरीर कैसा है? दुबला पतला छोटा सा, और मान कितना बड़ा भारी, श्री जगत का मानो मान इसी के अंदर में जाने कैसे समा गया। एक घड़े के अंदर में विश्व का जितना समुद्र है मानो उसी में आ गया, उठती क्यों नहीं है? किंतु आज मान न करो, अभी आ नहीं सुने, मान मत करो, आप तो भोली भाली हैं, जल्दी उठिए, प्रस्तुत होइए और झूला में चलिए, करो सोलह सिंगार, सोलह सिंगार को कीजिए। अब हम लोग कर रहे हैं, मान लें कि करती भी हैं तो क्या करती हैं, उनका मन अपने बसीभूत नहीं है, आनंद हो रहा है ना। आनंद किसी को कब होता है, विशेष करके लड़कियों के लिए, जब उसका पति वो जो कुछ कहती है उसी के अनुसार में चलने के लिए राजी है, निहोरा कर रहा हो, विनती कर रहा हो वैसा करने के, तो हृदय में ऐसा आनंद आएगा जो गले का हार सिर में, सिर का कमर में, पैर में, कहां कहां कौन, ये सोलह जो श्रृंगार इत्यादि हैं, अंगों के हैं, अलंकारों के हैं, कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ ऐसे हैं, उलट पुलट करके उसमें बन रही। जल्दी से सोलह श्रृंगार कीजिए और नैनों में क्यों काजल, काजल करने के लिए क्यों कर रही, इसका भी एक कारण, पहले रो रही थी कि अभी तक नहीं आए और रोने से सब भूल गए हैं, इसलिए वो आंख में कजर काजर नहीं। अब पुनः इसको डालो आंख में, ये काली सी चीज क्यों डालने का, आंखें तो सबसे अंगों में श्रेष्ठ है ना, यदि आंख नहीं है तो अंधार, और उसमें ये कालिक पोतना अलकतरा जैसा पोतना, ये क्या बात है? नहीं, ये श्याम का रंग मानो आंखों में रख करके श्याम ही को ये रख रहे हैं, ये भाव है। ये काजर अभी लाओ और जल्दी से उठ करके पधारिए। इस प्रकार से सखियां सब समझा लें, जब किसी तरह से नहीं समझेंगी तो सब सखियां जोड़कर उनको उठा करके बैठा देंगी और जबरदस्ती श्याम भी चढ़ करके उनको झूला झूलाने लगे। वो कीर्तन क्या है जो दामोदर गाता है? हाँ जरा याद है आपको? बस बोलो 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 जल्दी पढ़ो।
झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। जोड़ी लागे अति प्यारी बस नए ननो में, जोड़ी झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला हरी हरी मुखे और नैन श्याम के चकोर राधे मुखे और नैन श्याम के चकोर ब्रज गोपी प्रेम गोपति चरण झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला आ कैसी छाई हरी आली आली कौन जानो में कैसी छाई हरी आली ओ कैसी छाई हरी आली आली कौन जानो में कैसी छाई हरी
चक्षुर्विदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये हे देवी काकुभर गदगदयाद्य वाच जाति निपत्त भुवि दण्डवत उद्भटर्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनन्दिधे अंगश्यामलिंछताधिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्दञ्जागुदरोचिसाङ्गिदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधासन्तनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दामो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये चित्ताश्च पामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेऽपि तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमांसु तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे सन्निमां चरणं सुतनित्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्वापि
श्रीबृहद्भगवतां पञ्चमध्याय गोपकुमार जी द्वारका में पहुंचे हैं। नारद जी उद्धव जी हैं और ये हैं तीनों से विचार चल रहा है। नारद जी इनको उपदेश दे रहे हैं, उसका कारण बतला रहे हैं। ये आपको द्वारकापुरी तक में भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्यों, इसी का कारण वो बतला रहे हैं। जो लोग ब्रजरस रसिक वैष्णवों की कथाएं सुनते हैं उनको मुक्ति की तो बात ही क्या है, वैकुंठ उससे ऊपर, साकेत लोग उससे भी ऊपर, द्वारका और मथुरा की भी बातें नहीं सुहाती है और उनको कहीं भी रुचि नहीं लगती, यही उनको ये बतला रहे हैं। तुम्हारा मंत्र ही ऐसा था जो ब्रज से संबंधित है, इसलिए तुमको कहीं भी अच्छा नहीं लगा। और मैं शपथ खा करके, शपथ लेकर के मैं कह रहा हूं, द्वारकापुरी में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, ये समझ रखो। वैकुंठ में तुमसे हमारी भेंट हुई किंतु तुमको पूरा तथ्य नहीं बतलाए, इसलिए कि लक्ष्मी जी हैं उनको सुन करके दुख होगा और वो बिगड़ जाए, क्यों, उनका एक भाव नित्य स्थायी भाव हो चुका है, वो उसके अतिरिक्त वो नहीं जाएंगे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगेगा। द्वारकापुरी में भी रह करके रुक्मिणी और सत्यभामा के प्रेम को भी यदि मैं बतलाऊं जैसे इससे काम नहीं चलेगा तो रुक्मिणी सत्यभामा भी बिगड़ जाएंगे, केवल यही एक व्यक्ति हैं उद्धव जी जो ये नहीं बिगड़े, क्योंकि ये ब्रज का भाव जानते हैं, ब्रज की विशेषताओं को वो समझते हैं। इसलिए एक बात और सिद्धांत की बातें बतलाता हूं, क्या, जब प्रभु भौम जगत में, भौम वृंदावन में जब प्रकट लीला करते हैं उस समय वैकुंठ नाथ से लेकर जितने भी अवतार हैं, प्रकाश हैं, सब उनके अंदर में उपस्थित हो जाते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी वैकुंठ में वैकुंठ नाथ के दर्शन नहीं होते। तुम जब था गोप कुमार जबकि वहां पर वैकुंठ लोक में, तो कभी कभी तुम बहुत दुखी हो जाता था, उनके दर्शन नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि उस समय में कृष्ण आए हैं। तो वहां के लिए कितना समय होगा, यहां के लिए 100 वर्ष, 125 वर्ष कृष्ण इस जगत में, तो वहां 125 वर्ष वहां के लिए कितना होगा, एक सेकंड, तो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रहना भक्तों को अखरता है, इसलिए उनको नहीं देखते हैं खोजने पर, किंतु वो समय आए हुए हैं यहां। उसी तरह से सभी अवतारों के लिए समझना चाहिए, इसलिए कृष्ण के साथ में समस्त जितने भी प्रकाश अवतार, मनवंतर और जुगावतार इत्यादि सब उनके अंतर्ग में है, विशेषकर के 24 जो भगवान के अवतार हैं वो भी कृष्ण के अंदर में है। इसलिए कृष्ण को कोई वैकुंठ नाथ, कोई मूल नारायण, कोई नारायण, कोई नृसिंहदेव, कोई वामन देव, कोई त्रिविक्रम, कोई कुछ, इस रूप में उनकी प्रार्थना स्तौर स्तुति करते हैं और सबको वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें सभी कुछ है। किंतु वो वहीं तक नहीं है, वे गोलोक, गोलोक के अधिपति हैं, उनकी पूजा करने से, उनका नाम करने से सबका हो जाता है करना, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण में जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, सब प्रकार की विभूतियां जो कि और अन्य अवतारों नारायण में है, राम में है और में, समस्त जितने लोगों की कृपालुता है, सुंदरता है, उनकी महिमा है, उनकी लीला माधुरी है, शोभा, और भक्तों की वश्यता प्रेम के वश में हो जाते हैं भक्त वात्सल्य, ये पराकाष्ठा रूप में है भगवान के अवतारों में, वो पूर्ण रूप में है और कृष्ण में पराकाष्ठा रूप में है। विशेष करके वृंदावन में पराकाष्ठा, द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वहां पर पूर्णतम ब्रज में, और इसको इस प्रकार से भी कहा जाएगा वैकुंठ में पूर्ण, द्वारका मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम। ये सभी चीजें नारायण भी मुक्ति दे देंगे, राम भी मुक्ति दे देंगे, भगवान के अवतार लोग मुक्ति दे देंगे, किंतु मार करके प्रेम नहीं देंगे। किंतु कृष्ण क्या करते हैं, प्रेम भी दे देंगे। ये विशेष उनमें है। रामचंद्र जी ने रावण युद्ध में या और सब असुरों को जो मारा, उन्होंने उनको मुक्ति दी चार प्रकार की, और जो लोग भगवान का भजन किया उनको क्या देंगे, उनको प्रेम दिया, उनको प्रेम दे सकते हैं किंतु मार करके नहीं। और कृष्ण मार करके भी दे देंगे तो वो मुक्ति से ऊपर दे देंगे, प्रेम दे देंगे, जैसे पूतना है और सब लोग, इनकी विशेषता है। इसलिए ये सब चीजें कृपालिता विभूति सुंदरता महिमा लीला माधुरी इत्यादि भक्त वात्सल्य परम पराकाष्ठा में ही प्रकटित होती है। एक ही तत्व, जैसे द्वितीया के चांद से प्रकाश तो आरंभ होगा किंतु पूरा प्रकाश नहीं आएगा, और पूर्णिमा का चांद से तो ये चांद दो नहीं है एक ही है। एंगल ऑफ विजन से प्रकाश का तारतम्य है। चांद कभी भी एक एक दो तीन चार पांच कलाएं उसमें नहीं है, सब समय पूर्ण है, किंतु जो दृष्टा है जहां से देख रहा है छाया इत्यादि के वजह से उसमें कलाएं दिख पड़ती हैं, किंतु उसमें कला फला नहीं है। हमने पहले दिन बतलाया था, भागवत में ऐसा लिखा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसया पाय तप साध्वी लेभे गतिं धातु उचितं ततो अन्यम कंगवा दयालु शरणम ब्रज। अहो बड़े आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं, उतना उनको जान से मारने के लिए गई, बाल घातिनी थी, रूधी रक्त बच्चों का पान करती थी, बड़ी क्रूर थी, हिंसक थी, माता का वेश बनाया तो उसको धात्री उचित प्रेम की गति दी, ऐसा कौन दयालु होगा। अब यहां पर यह विचार करके कहा जा रहा है, भक्तों को इसे क्या सीखना है, धात्री की गति जिसको चाहिए या मुक्ति की जिसकी अभिलाषा है वो इस पर विचार करेंगे। भक्त लोग क्या विचार करते हैं, हमारे भजन साधन में